اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 66، اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو شیطان سے کیسے بچاؤ، اور وہ کب ہوگا؟ جب تمہیں اپنے رب کا یقین آئے گا، ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب تو وہ ہے جو کشتی کو چلاتا ہے بحر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل۔ تو کیا پتہ چلا؟ اگلی چیز شیطان سے بچنے کی، اپنے رب کی خوبیوں کا اقرار کریں، اور پھر اسی سے ہی کہیں کہ اللہ تو مجھے شیطان مردود سے بچا دے۔ پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 78 میں فجر کے وقت قرآن کی خوبی کا تذکرہ ہے کہ ان قرآن الفجری کان مشہودا۔ فجر کی نماز میں سب سے لمبی قرأت کی جانی چاہیے۔ تھوڑا سا محاسبہ کرتے ہیں اپنا، فجر کے بعد تھوڑا سا ہی صحیح قرآن پڑھتی ہوں، ایک رکوع شروع سے شروع کر لیں، ترتیب سے چلتے رہے، چلے اگلے رمضان تک قرآن پورا ہو ہی جائے گا نا، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھیں، عادت بنا لیں چند آیات کی۔ اس وقت فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، فجر پر فرشتے آتے ہیں اور عصر پر جاتے ہیں۔ اس وقت آپ نماز میں اور قرآن میں مشغول ہیں تو وہ آپ کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ، جب گئے تھے تب بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے اور اب آئے ہیں تو بھی یہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس کا عادی کر دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 82، قرآن پاک کی خوبیاں ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے وہ چیز جو شفا بھی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قرآن کچھ لوگوں کو نرم کرتا ہے، ہائی لائٹ کیجیے گا اس کو، اور کچھ اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ کون، ڈر نہیں لگا آپ کو کہیں میں قرآن سن کر اور ہی سخت نہ ہو جاؤں؟ کیسے؟ جو قرآن کو دل پر لے کر سنتا ہے اور اس کی آنکھیں بہتی ہیں، اس کا دل نرم ہو جائے گا، اور جو قرآن صرف کانوں سے سنتا ہے، اس کا دل گھبراتا ہے کہ جلدی جان چھوٹے۔ کتاب بھی ویسے عجیب ہے، یہ صرف اس کو اپنا دیتی ہے جو اپنا سب کچھ دے دے۔ کسی کا بہت پیارا قول ہے، علم تمہیں اپنا کچھ بھی نہیں دیتا جب تک تم اپنا سب کچھ اس کو نہ دے دو۔ جو دل پہ لے گا اس کا دل نرم ہوگا، آنکھیں بہیں گی، دل نرم ہوگا، اور جو صرف کانوں سے سنتا اس کا تو دل گھبراتا ہے کہ جلدی سے جان چھوٹے۔ کتاب بڑی عجیب ہے، یہ صرف اس کو اپنا دیتی ہے جو اپنا سب کچھ دے دے۔ کسی کا بڑا پیارا قول ہے کہ علم تمہیں اپنا کچھ بھی نہیں دیتا جب تک تم اپنا سب کچھ اس کو نہ دے دو۔ مراد ہے، دو لفظ لکھ لیجئے، کامل توجہ اور اخلاص، یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں۔ اس کے بعد آیت 90 سے 94، جو سورت کے آخری حصے کی آیات ہیں، کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کی فرمائش کر رہے تھے۔ اتنا پیارا کلام نازل ہونے کے باوجود، یہ آخری دور کی آیتیں ہیں، مکہ کا آخری دور تھا، جس کو یہ قرآن کا معجزہ نہیں دکھتا۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے انبیاء کرام کے معجزے وقتی تھے، حضرت صالح کے دور میں اونٹنی آئی اور ختم ہو گئی، موسیٰ کے ہاتھ میں عصا سام بن جاتا پھر ختم ہو گیا، اللہ کے نبی کا معجزہ قرآن ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا، اور یہ معجزہ اسی کو فائدہ دے گا جو اسے ہدایت کی نظر سے لیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس معجزے کے آگے ہار ماننے والا بنا دے۔ اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 107 سے 109، کچھ لوگوں کے قرآن سن کر رونے اور سجدے میں جانے کی بات آتی ہے۔ قل آمنوا به و لا تؤمنوا، تم اس پر ایمان لاؤ نہ لاؤ، کہہ دیجئے کہ بے شک جو لوگ علم والے ہیں، ان سے پہلے جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ محاسبے کے نقطوں میں ایک نقطہ نوٹ کریں، کیا قرآن پڑھتے ہوئے میرے اوپر بھی خشوع طاری ہوتا ہے؟ پھر آیت 109 میں سجدہ ہے، سجدہ تلاوت فرض تو نہیں لیکن کرنے کا اجر ہے، جہاں بھی ہیں جس جگہ بھی ہیں وہاں کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر باوضو ہو کر قبلہ روح ہو کر سجدہ کیا جائے تو بہتر ہے، اس میں اجر بھی ہے اور بندہ عاجزی بھی محسوس کرتا ہے۔ صرف سر کا سجدہ نہیں، عقل کا بھی سجدہ، اس کو ہائی لائٹ کریں، صرف سر نہیں جھکانا اللہ کے آگے، عقل بھی جھکانی ہے۔ جی، اپنے آپ کو جھکانا ہے کہ میں چھوٹی ہوں اور میرا رب بڑا ہے۔ جب صرف سر سجدے کرتا ہے تو نماز کے بعد بھی بندہ اپنا سر اکڑا کر پھرتا ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کریے گا، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اکڑاتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی اکڑتا ہے، लेकिन जब सर के साथ दिल भी सजदा करता है तो हर काम करते हुए पूछता है कि अल्लाह तू बता मैं क्या करूं। अपने लिए पूछिए, मेरे सजदे कैसे होते हैं? क्या मेरे ये सजदे मुझे वाकई अल्लाह के आगे झुकाते हैं? और फिर इस सूरत की आखिरी आयत में अल्हम्दुलिल्लाह भी है और अल्लाहु अकबर भी है। इसको आयत इज़्ज़ा कहते हैं, इज़्ज़त वाली आयत। وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ कह दीजिए कि सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने ना तो औलाद बनाई और ना उसका बादशाही में कोई शरीक है और ना उसका कोई वली है इज़्ज़त में, और कब्बिरहु तकबीरा उसी की बड़ाई को बयान कीजिए, बड़ाई को बयान करना। तो क्या पता चला? अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर भी है। और सूरत शुरू किस लफ्ज़ से हुई थी? सुभान अल्लाह। तो एक ही सूरत में तीनों तस्बीहात मौजूद हैं, इज़्ज़त वाली आयतें हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि जितनी बातें इस सूरत में पढ़ी अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए और इन सारे फितनों से महफूज रखे जिसका बनी इसराइल शिकार हुए थे। आप कह लीजिए कि इस सूरत में उम्मत मुस्लिमा को आईना दिखाया गया है कि देखो कल के मुसलमानों में जब ये खराबियां आईं जिनका ज़िक्र इधर है तो वो कैसे बिगड़े, कैसे मिट गए, जैसे थे ही नहीं। तो मुसलमानों अगर तुम भी ऐसे ही काम करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। इसके बाद है वो खूबसूरत सूरत जिसका आपको भी इंतज़ार था और वो है सूरत अल-कहफ़। हर जुमे को पढ़ी जाने वाली सूरत फितनों का तोड़ है। अल्लाह के नबी सल्लम ने जो कुछ इसके बारे में कहा आइए ज़रा देखते हैं। अहम सूरत है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखेंगे। तीन बड़े बड़े वाक़यात हैं और कुछ छोटे वाक़यात भी हैं इसमें। ये इन सूरतों में से हैं जो किस्से और कहानियों पर मबनी हैं। इस सूरत को भी हम नसीहत लेते हुए पढ़ेंगे और इस सूरत के बारे में रिवायत है कि इसकी इब्तदाई 10 आयतों को याद करना फितने दज्जाल से बचाने वाला अमल है। और फरमाया आपने कि मेरी उम्मत पर सबसे बड़ा फितना जो आएगा वो दज्जाल का फितना है। तो फितनों में अगला फितना नोट कीजिए, दज्जालियत। दज्जल कहते हैं धोखे को, दज्जल फ्रॉड। तो ये दुनिया का धोखा है। सबसे बड़ा फितना जिसमें उम्मत मुस्लिमा शिकार है वो माल और दौलत का फितना है। रिवायत में आता है कि क़यामत से पहले एक ऐसा वक्त आएगा कि ज़मीन पर इतने फितने होंगे कि जब लोग कब्रिस्तान के पास से गुज़रेंगे तो साहिब कब्र को मुखातिब करके कहेंगे कि काश मैं तेरी तरह ज़मीन के सीने की बजाय इसकी गोद में होता, ऊपर क्यों फिर रहा हूँ, इसके अंदर होता। मतलब यह है कि वो कब्र वाले को अपने से ज़्यादा खुशकिस्मत तसव्वुर करेंगे। और एक रिवायत क़यामत के दिन औलादें वालदैन की नाफरमान हो जाएंगी। ये भी फितना है आज के दौर का। इस सूरत को हर जुमे को पढ़ने की फजीलत है। एक जुमे से दूसरे जुमे तक नूर का वादा है। पूरी सूरत का मौजू है मादा परस्त सोच, मटीरियलिस्टिक अप्रोच लिख लीजिए इंग्लिश में, यानी मादा परस्ताना सोच से कैसे बचा जाए। आइए देखते हैं। पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। सूरत की पहली और दूसरी आयत से पता चलता है कि फितनों के मौके पर अगर राह निजात है तो वो ये किताब है। छुएं ज़रा अपने किताब को, ये कुरान। सारी बीमारियों सारे फितनों से बचने का नुस्खा है इस सूरत के अंदर। अल्लाह हम मुसलमानों को इसको समझने की तौफीक दे। आपने फरमाया मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब भी तुम इन्हें थामे रहोगे गुमराह नहीं होगे, वो है कुरान और मेरी सुन्नत। आज देख लें कि इंसानियत जिन फितनों का शिकार है, जिस डिप्रेशन और ज़हनी अफसुर्दगी का शिकार है, इससे पनाह मिलती है तो इस किताब के दामन में आकर मिलती है। फिर आयत नंबर 6, नबी की तड़प। फल अल्लकबाख़नफ़ अला आसारिहम इलम यूमिनु बिहाज़ल हदीसी असफ़ा। अल्लाह के नबी ने जान खपाई तो आज उम्मत बच गई। हाईलाइट कीजिए इस जुमले को और दो सेकंड गौर भी करिए। नबी ने जान घुलाई, जान खपाई तो उम्मत बच गई। आज हम जान बचाते फिरते हैं तो उम्मत का हाल देख लीजिए कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गए। वो कहते हैं ना, कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था कि जिसका टूटा हुआ है एक तारा, हम क्या थे तुझे अपने आबा से निस्बत हो नहीं सकती, तू साबित वो सैयारा। तू तो एक जगह जम के रह गया अपने घर माल कोठी बंगले से, और वो घूमते थे साए खून थे, वो अल्लाह के दीन के लिए घूमते थे, आज हमारे पाँव पकड़े हुए हैं कहीं घरों ने, कहीं बिजनेस ने, कहीं तालीम ने, और हम कहाँ कहीं इधर उधर जा सकते हैं। आज उम्मत का हाल देख लीजिए, ऐसा लगता है कि लोगों को नेकी की तरफ बुलाना हमारी लिस्टों ही में नहीं है। कितने लोग हैं जो वाकई सोचते हैं कि ये भी कोई नेकी का काम है और ये मेरे करने का काम है कि मैंने दीन पहले सीखना है फिर दूसरों को सिखाना है हमारी लिस्टों में। अमूमन इस कोर्स से पहले तो बहुत कम था और आगे बढ़ता जाएगा जितना कुरान सीखते जाएंगे। हमारी तो बड़ी लिस्ट होती कि बस नमाज शुरू कर दें, अब मैं बड़ी नेक हो जाऊँगी नमाज शुरू कर दूँगी। नेकी की जो लिस्ट फ़ज़ाइल और अमाल हमारी बातों और हमारी ज़िंदगियों में दीन के नाम पर होती है वो अमूमन नमाज रोज़ा हज ज़कात पर आकर रुक जाती है, लेकिन तबलीग तो ऐसे लगता है कि कुछ और ही लोगों का काम है। हर शहर में चंद चेहरे चंद नाम, हालांकि अल्लाह के नबी ने पूरी जान लगाई, बहुत कम लोग जानते हैं कि जब तक हम सब अल्लाह के दीन को खुद समझकर दूसरों को बताने वाले और इस पर अमल की कोशिश करने वाले नहीं बनेंगे तब तक उम्मत नहीं बचेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना छोड़ दोगे तो करीब है कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं कबूल ना करे, तुम दुआ करोगे और वो कबूल नहीं करेगा, तुम पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देगा। यहाँ हम अपना मुहासबा करते हैं, क्या मैंने भी अपनी जान इस गम में घुलाई कि लोग हिदायत पर क्यों नहीं आते। इसके बाद आयत नंबर 6 और 7, इन्ना जालना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला कहते हैं, फरमाते हैं, क्या दुनिया में हर चीज़ एक इम्तिहान का पर्चा है, हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा, हर नेमत इम्तिहान का पर्चा, खुशियाँ इम्तिहान, गम इम्तिहान, हाँ कुछ मुश्किल पर्चे हैं कुछ आसान, लेकिन सब आजमाइश है। अल्लाह ताला हम को देख रहा है कि हम में से कौन अच्छे अमल करता है। सोचिए ज़रा कितनी आजमाइशों में घिरी हुई हूँ मैं। बच्चा पैदा और कोई कि अच्छा अल्लाह आपको इस आजमाइश में पूरा उतारे तो आप गुस्सा करेंगे, आप कहेंगे क्या मतलब मेरे बच्चे को आजमाइश कह रहे हैं। जी हर बच्चे इम्तिहान का पर्चा है, क्या आप उसकी तरबियत कैसी करती हैं। फिर इसके बाद इस सूरत पर अगर नज़र डालें फितनों के बाप में, पहला वाक्या जो इस सूरत में आ रहा है वो है फितना ईमान। इसको लिस्ट में डालिए, फितना ईमान सबसे सख्त ईमान फितना होता है, फितना ईमान सबसे सख्त फितना है। अल्लाह ताला मुसलमानों को एक पैगाम दे रहे हैं कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसे हालात हो जाएं कि तुम्हारे ईमान को ख़तरा हो, कि लोग तुम्हें तुम्हारे दीन और ईमान की वजह से मारने लग जाएं या तुम्हें ज़बरदस्ती कुफर की तरफ ले जाएं, इस्लाम से दूर करें, तो बताओ क्या करोगे। यानी गारों में पनाह लोगे या फिर अपने असूलों पे समझौता कर दोगे। आयत 9 से गार वालों का किस्सा है, यानी जिस नाम पर यह सूरत है वो शुरू होता है। अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ़ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। ये कौन थे थोड़ा सा इसका पढ़ लीजिएगा। हज़रत ईसा के करीब का दौर है, एक बादशाह काफिर था, लोगों को ज़बरदस्ती कुफर पे लाता, जो बड़ी उम्र के लोग थे वो तो समझौता करके यानी कॉम्प्रोमाइज़ करके उसकी बातों में आ गए, लेकिन नौजवानों का एक ग्रोह था, कितने थे इससे कोई सरोकार नहीं। उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे, उन्होंने मुसालहत नहीं की यानी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और वहाँ से निकल पड़े, तो अल्लाह ने एक गार में पनाह दी और वहाँ जाकर अल्लाह की रहमतें मांग रहे हैं। आप भी मांग लीजिए अपने लिए, मेरे साथ दोहराइएगा, रब बना आतीना मिल लदुनका रहमतम वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। हम अपने लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ये काम जो हम कर रहे हैं इसमें अपने पास से रहमत डाल दे और हमारे इन सारे कामों को आसान कर दे। दीन के रास्ते में हिजरत और कुर्बानी के बाद सबसे बड़ी चीज़ दुआ होती है, हम उसी सहारे को इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद क्या पता चला कि जब अल्लाह के रास्ते में निकलें तो दुआएं करें और इस किस्से से ये भी पता चलता है कि जब हमारा कोई मुआविन ना हो और हम अल्लाह के रास्ते में निकलें तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा कर देता है कि उसके काम होते जाते हैं। यानी लोग कहते हैं कहाँ से होता है, आप कहते हैं वहाँ से होता है, ऊपर से होता है काम। कौन सा ऊपर है? अल्लाह की ज़ात। हमेशा अल्लाह पे नज़रें लगाइए, फिर देखिए काम कैसे होते हैं। 309 साल तक ये साहबे कहफ सोए रहे, और जब वो अपनी असली मौत फौत हो गए तो लोगों ने आपस में झगड़ा किया कि हम तो इनकी जगह पर एक इबादत गाह बनाएंगे, इनका मज़ार बनाएंगे, ये तो बड़े पहुँचे हुए लोग थे। सोचिए ज़रा, ये हर दौर की बात नहीं है। अपनी ज़िंदगी में एक इंसान बैठा हुआ है, यानी आप और मैं, उठ के भागना चाहें तो भाग सकते हैं, पंखा बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, एसी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, यहाँ से उठ के नीचे रिक्शे में बैठना चाहें बैठ सकते हैं ना। चलिए कोई फौत हुआ, बस सोचिए जो आपके करीब के दौर में फौत हुआ, वो ये सब कुछ भी कर सकते हैं। फौत होता है बंदा, लोग उसके कपड़े काटते हैं, औरत है तो उसका जेवर तोड़ के उतारा गया, फिर उसको गुसल दिया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को दूसरी औरत ने धोया, उसको बेरी के पत्तों से गुसल दिया। अब मर्द को जहन में लाइए, क्योंकि अक्सर शुक्र है अल्लाह का कि पीर जो हैं वो मर्द ही होते हैं। अब वो पीर साहब जिनका कफन दफन दूसरों ने किया, उनका स्तंजा कराया, ज़िंदगी में बंदा तसव्वुर भी कर सकता है इन कामों का कि कोई दूसरा उसके लिए करे? क्या अपना स्तंजा करना ज़्यादा मुश्किल काम है या किसी को बेटा देना, किसी की बिगड़ी बनाना? पहले वो बेचारे अपनी तो कुछ बना सके, लेकिन आप देखिए जो ही कोई कब्र से ऊपर होता है तो आपका मुहताज, और मनो मट्टी में दफन करके ऊपर मट्टी डाली तो आपके सारे काम बनाने वाले बाबा जी पहुँचे हुए हो गए। बेचारे कुछ कर सकते तो पहले वो मट्टी तो हटाते, फिर कब्र से बाहर तो आते, कुछ तो करते गरीब। उससे तो ज़्यादा वो बंदा मुख्तार है जो उस बाबा जी से मांग रहा है, वो उनकी कब्र की मट्टी हटा सकता है, बाबा जी नहीं मिटा सकते। लेकिन लोगों की आदत है, वो नेक लोग जिन्होंने ज़िंदगी भर तौहीद के नूर को आम किया, उनके तरीक़ों पे चलने या उनकी तालीमात से फ़ायदा उठाने की बजाय उनकी शख्सियत के सहर में खोकर उनको बड़ा बना लेते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि यह बात आप में से किसी को ना पता हो, गली गली कोना कोना जाकर देखिए क्या क्या मज़ारों के नाम और गलियों के नाम और महलों के नाम और क्या क्या लफ्ज़ लिखे हुए बाहर। तो अल्लाह करे कि हमें ये शिर्क और तौहीद का फ़र्क समझ आ जाए। अल्लाह के नबी ने इसको नापसंद किया और फरमाया कि यहूद और नसारा का जब कोई बड़ा मरता तो वह इसका मज़ार बनाते, तुम मेरी कब्र के साथ ऐसा नहीं करना। आयत 24 में हमारे लिए मुहासबे का नुक्ता है, क्या मैं कोई काम करने के इरादे के वक्त इंशाल्लाह कहती हूँ तो नियत कीजिए। लेकिन कितनी दफ़ा इंशाल्लाह कहना चाहिए एक जुमले में? एक ही दफ़ा कहें। बाज़ लोग इसको भी मजाक बना लेते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी कामल सामने रख कर हमें इंशाल्लाह कहने की इसमें आदत डाली गई। फिर आयत 28 में बहुत ही अहम मौजू है, क्या है कि अपनी कंपनी को चेक करो, किन की सोहबत में बैठते हो। वस्बिर नफ्सक माल लजीन यदून रब्बहुम बिलगदाति वलशिश, यानी तुम किन लोगों की सोहबत में हो, अल्लाह को रब मानने वाले, अल्लाह को पुकारने वाले या अपनी ख्वाहिशात को मानने वाले लोगों की सोहबत में। यहाँ जो फितना है वो नफ्स का फितना है। इसके बारे में 13वें पारे में हम देख आए हैं ना, वमा उबर्रियु नफ्सी इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। इसी को सामने रखते जाइए, चेक करें क्या मैंने ख्वाहिश को अपना खुदा तो नहीं बना रखा, क्या मैं इन लोगों के दरमियान उठती बैठती हूँ जो अल्लाह की याद से गाफिल हैं, मेरी दोस्तें कैसी हैं, क्यों ना बैठे, क्योंकि फिर आप भी गाफिल हो जाएंगे। तो यहाँ आप देखिए कि आपको मुझे बुरी सोहबतों के फितने से बचाया गया। अब आगे दूसरा बड़ा वाक्या शुरू होता है आयत 32 से, माल का फितना। इस वाक्य में दो लोगों की बात है, एक को अल्लाह ने बहुत सारा माल दिया, उसका रवैया बिगड़ गया, और दूसरे के रवैये में कितनी आजजी थी। आयत 45 में अल्लाह ताला ने इस हकीकत को समझाया कि माल क्या है। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, माल और बेटे दुनिया की ज़िंदगी की ज़ीनत हैं। अल्लाह से दुआ करे कि ये आखरत की ज़िंदगी की भी ज़ीनत बन जाए। इंसान के लिए जो बहुत बड़ा फितना इस दुनिया में है वो माल और औलाद है, हाईलाइट करेंगे। इन आयात में अल्लाह ताला ने इन दोनों फितनों का रद्द बता दिया कि कैसे इन चीज़ों को अपने लिए फितने की बजाय नेमत बना लो, इनाम बना लो, अल्लाह की रहमत बना लो। और वो चीज़ है कि माल और बेटे दुनिया की जीनत तो हैं, लेकिन इनको बाक़ियातु सालेहात में बदल दो। बाक़ियातु सालेहात क्या होती हैं सोचिए। तो जवाब नोट कीजिए, इंसान के दुनिया से जाने के बाद कोई चीज़ इनके पीछे नेकी की सूरत में बाकी रहे, यह है बाक़ियातु सालेहात। दुआ करें अल्लाह हमारी औलाद दें और हमारे माल हमारे लिए जन्नत के सर्टिफिकेट्स बना दें, उधर जा के पता चले कि हमारे लिए ये दुनिया में अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत थी। करें क्या, कैसे, यानी अब अल माल वल बनून अज़ीनतुल हयात दुनिया, कैसे इनको दुनिया से निकाल कर आखरत के लिए ले जाएं? तो नंबर एक लिखिए, सबसे पहले ख़ुद इस ज़िंदगी की हकीकत को समझिए। माँ बाप को नहीं पता ना कि जीने का मकसद क्या और दुनिया में क्यों भेजे गए, तो औलादों को कौन सिखाएगा। एक खेती के अंदर आज जो सब्ज़ा है, कल इसके अंदर हवाएं चलेंगी और इसकी भूसी को लेकर उड़ जाएंगी। इन दो लफ्ज़ों ने मेरी और आपकी 40, 50 और 60 साल की ज़िंदगी का नमूना पेश कर दिया। पहले हम ख़ुद देखें कि हमारी ये दुनिया कितने दिन की है, फिर इसके मुताबिक अपनी औलाद की दुनिया बनाने की इतनी कोशिश करें जितना इस दुनिया में रहना है, और बंदे को इस दुनिया की हकीकत समझ आ जाए तो वो अपनी औलाद को सिर्फ इस दुनिया के लिए खपा देगा, जिसकी वजह से फिर वो अपने आप को आखरत में महरूम ना पाए और ना वो दुनिया के माल को सिर्फ दुनिया के लिए लगाएगा। ऐसे ही है ना, लोग दुनिया की चीज़ों को दुनिया में ही खपा के चले जाते हैं। अक्लमंद वो है जो इन दुनिया के माल और असबाब को, औलाद और ख़ून के रिश्तों को आखरत की बेहतरी का ज़रिया बना ले, ये ज़रूरत है इस बात की। और फिर उसके बाद आप देखिए, यहाँ हम अपने लिए मुहासबे के नुक्ते नोट करते हैं। क्या मैंने अपने माल और औलाद को बाक़ियातु सालेहात में शामिल करने का इरादा कर लिया? सोचिए ज़रा ख़ुद अपने लिए। दुनिया में रहते हुए अगर हम इन दोनों चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में लगा देते हैं तो हमारे बाद भी उम्मीद की जा सकती है कि ये चीज़ें हमारे लिए खुशी का सबब होंगी। ऐसे ही है, और ये वो चीज़ है जिसकी माँ बाप को फ़िक्र होनी चाहिए। बाकी तो सब कुछ पीछे रह जाएगा, लेकिन औलाद आगे आ जाएगी। आप इस दुनिया में हैं ना, अपनी औलादों और अपने माल को अल्लाह के रास्तों में लगाएं। कल जब हम आगे पहुंचेंगे ना, तो ये पहले से मौजूद खड़े होंगे वहाँ आपका मेरा इंतज़ार करने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो इसका नाम-ए-अमल मुनक़ते हो जाता है। सिर्फ़ तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इसके बाद भी इसके लिए सदका जारिया बनती हैं, जिनमें सबसे पहले वो इल्म जो इसने हासिल किया, फिर दूसरों को सिखाया और बाद में इससे फ़ायदा उठाया गया। इस इल्म को अल्लाह उसके लिए बाक़ियातु सालेहात में शामिल करता है। फिर दूसरी चीज़ जो है वो इंसान की औलाद जो इसके बाद नेकी करती है, दुआ करती है। और तीसरी चीज़ है सदका जारिया, कोई भी नेकी। इन तीनों चीज़ों के अलावा बाकी चीज़ें कोई काम ना आएंगी। कल क़यामत के दिन ऐसा लगता है कि हम जन्नत में जाकर भी शायद याद करेंगे कि हाय इतना कुछ पीछे रह गया। सोचिए ज़रा, आग लग जाए घर में और वहाँ रखे नोट जल जाएं, क्या अफसोस होगा। काश ये नोट उठाकर किसी जगह दे दिए होते, जलने तो थे ही। चोर आए जेवर ले जाए, चोरी का तो जो गम और अफसोस है वो अपनी जगह ये बड़ा होना था कि ये किसी को दिए होते, इस्तेमाल हो जाती चीज़। तो क्या ये सब कुछ हमारे साथ नहीं होने वाला? कितना छोटा दिल है इंसान का, छोटी छोटी दुनिया की ख्वाहिशों पे एक एक दो दो रुपया बचाता है, और इतनी बड़ी आखरत जो मेरी आपकी मुंतज़िर है उसके लिए इन्वेस्ट नहीं करता। लाखों इन्वेस्ट करते हैं लोग हर दिन रात कारोबार में मज़ीद पैसे बनाने की उम्मीद पे, और आप सोचिए ज़रा इस आखरत को रिस्क पे रखा हुआ है, कितनी हैरत की बात है। रिवायत में आता है कि जन्नत में जाने के बाद जन्नतियों को किसी चीज़ पर अफसोस नहीं होगा सिवाय इन लम्हों के जो अल्लाह की याद के बग़ैर गुजारे। इसको हाईलाइट करें, कौन सी महफ़िलें हैं जहाँ अल्लाह की याद आ ही नहीं सकती, हालात ही ख़राब है। फिर इसी तरह कुछ नेकियाँ, जैसे सुबहान अल्लाह के बारे में आता है कि इसके पढ़ने से जन्नत में दरख्त लगते हैं। तो हम सब को अपनी ज़िंदगी का ये हदफ बनाना चाहिए कि कैसे हम इन चीज़ों को अपने लिए नेमत बनाएं। एक छोटी सी मिसाल है, जैसे कश्ती और पानी का ताल्लुक। कश्ती कब चलती है? बोलिए, जब बाहर पानी हो। पानी नहीं होगा तो कश्ती, लेकिन जब वही पानी इतना भर जाए कि कश्ती के अंदर आ जाए तो बस। यही मिसाल याद रखिए दुनिया के इस माल की। दुनिया के इस माल से हमने अपनी आखरत की कश्ती को चलाना है, लेकिन अगर ये माल इतना ज़्यादा भर गया कि इसकी मोहब्बत दिल में आ गई, तो ना सिर्फ़ ये कि हमें डुबो देगा बल्कि सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा। अल्लाहु अकबर। ये मौलाना रूमी की शायद फ़ारसी की कहावत है जिसका ये तर्जुमा है। सोचे ज़रा, मैं माल की मोहब्बत में डूबी भी तो नहीं हूँ? जैसे उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत ही, कहीं मेरे दिल में माल की तो नहीं है? इसी तरह फिर आयत 47 से अगली आयतों में क़्यामत के कुछ मनाज़िर हैं, ताकि हमें उस दिन की फ़िक्र लग जाए कि क्या होने वाला है उस दिन। आज आप देखिए कि दुनिया में ज़रा सा ज़लज़ला आता है तो क्या हालात होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, वयौमा नुसय्यिरुल जिबाल वतरल अर्द बारिज़ा वहशरनाहुम फलम नुगादिर मिनहुम अहदा। सब मलिया मेट हो जाएगा, चिकना चूर हो जाएंगी सब चीज़ें क़्यामत के धमाके से। अल्लाह हमें उसकी फ़िक्र लगा दे। इसके बाद आयत 60 से एक ऐसा वाक़या शुरू हो रहा है जो 16वें पारे में भी जारी रहेगा। यहाँ पर इल्म के फितने की बात है। सोचिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने दौर के नबी थे, साहिब तौरात थे, अल्लाह ताला से कलाम का शर्फ़ हासिल कर चुके थे, इतनी डिग्रियाँ थी मूसा के पास, फिर भी अकड़ नहीं थी, तकब्बुर नहीं था। हम तो चार लफ्ज़ भी सीधे नहीं पढ़ सकते और हमारी गर्दन अकड़ने लगती है, मैं आलिमा हूँ, मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ। याद रखिए, सबसे बुरा तकब्बुर इल्म का तकब्बुर है, पीछे भी पढ़ चुके हम। और यहाँ तो फितना है ऐसा इल्म वो जो आपको अपनी नज़रों में बहुत बड़ा कर दे। मूसा के अंदर ऐसा कोई तकब्बुर नहीं था। इसके बावजूद जब भी उनको ये बात पता चली कि मुझसे भी ज़्यादा कोई इल्म वाला है, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं तो जाऊँगा। किसी ने मूसा से पूछा कि इस दुनिया में इस वक्त सबसे बड़े इल्म वाला कौन सा है? चूँकि ये साहिबे तौरात थे और तौरात अल्लाह की तरफ से आई थी, तो इन्होंने कहा कि मैं ही होऊंगा, क्योंकि मैं नबी हूँ और नबी से ऊपर तो दर्जा आम लोगों का नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह सुभान ताला ने उनकी तरबियत के लिए उनको आजमाइश में डाल दिया। कैसे? उनका ख्याल था कि मैं तौरात को जानता हूँ, मेरे ही पास इल्म होगा। अल्लाह के दिए हुए इल्म पर मान था, कोई तकब्बुर नहीं था। लेकिन जब इनको पता चला कि हिज़र नाम के एक शख्स हैं जिनको अल्लाह ताला ने आपसे भी ज़्यादा इल्म दे रखा है, यानी अल्लाह ताला ने आपसे ज़्यादा उनको इल्म दिया, तो तअस्सुब का शिकार होने की बजाय, हसद करने की बजाय कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे से ज़्यादा जानता है तो मैं जाता हूँ और सीखता हूँ। ये है सबसे प्यारा इलाज इल्म के फितने से बचने का। मज़ीद इल्म सीखने की तलब रखो। याद रखिए, जिसके दिल में मज़ीद इल्म सीखने की तलब नहीं है ना, वो आलिम नहीं हो सकता। कारोबारी के पास लाखों आ जाएंगे ना, वो करोड़ों की फ़िक्र करेगा। करोड़ों कमा रहा है, अरबों की फ़िक्र करेगा। एक इल्म वाला थोड़े से इल्म पे खुश होकर बैठ जाए कि मुझे तो सारा आता है, मैं तो बिज़ी बहुत हूँ, मैं तो मसरूफ़ ही बहुत हूँ, लो मैं पढ़ूँ, तो याद रखिए फिर ये उसके इल्म का फितना है। और ख़ास तौर पे जब अंदर तासुब और हसद हो। यही वो तरीका है जिसमें आप दूसरों के इल्म से बढ़ सकते हैं। जो लोग दूसरों के इल्म से फ़ायदा नहीं उठाते, वो कभी भी इल्म में नहीं बढ़ते। इस तरह जब अपने थोड़े से इल्म को काफ़ी समझ कर इसी में बैठे रहते हैं, तो वो कभी भी काम नहीं कर पाते। खुले जहन के साथ इल्म लेते जाइए, अल्लाह ताला आपकी खुशबू को फैलाता जाएगा। मिसाल से समझिए, मेडिकल की इस्तेलाह में एक लफ्ज़ होता है रिफ्रेशर कोर्स। हर साल डॉक्टर्स को कुछ घंटे लगाने पड़ते हैं ताकि नई बीमारियों के बारे में जान सकें, नई दवाएं आई हैं, सब कुछ उसको जाने। वो डॉक्टर जो आज से 20-25 साल पहले पढ़ चुके और उन्होंने किताबों को हाथ नहीं लगाया और दुकान खोल कर बैठ जाए, तो हो सकता है कि वो इस दौर की बीमारियों को समझ ही ना सके, लोगों के इलाज की बजाय इनका नुकसान कर दे, मुमकिन है कि नहीं? बिल्कुल, इल्म की आफ़तों में एक बड़ी आफ़त यह है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। वो ये समझ लेते हैं कि अब हमें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह इल्म की एक दूसरी आफत या फितना है भूल, फॉरगेटनेस। इंसान भूल जाता है। आपने 10 दफ़ा एक बात सुनी होगी, 2-4 माह ना पढ़ें तो भूल जाते हैं। कितने लोग इसकी तस्दीक करते हैं? बिल्कुल। फिर इसी तरह इल्म के अंदर एक तकब्बुर आ जाता है कि कोई मुझसे बड़ा नहीं। इल्म का एक और बड़ा तकब्बुर क्या है कि मैं सिर्फ़ अपने उस्ताद से ही सीखूंगा, किसी और से नहीं। यानी मसलक, जमात, गिरोह, इदारे का नाम लेके कहना हमें किसी और से पढ़ने सीखने की इजाज़त नहीं, ये मुराद है इससे। इसके अलावा इल्म को ज़ाया कर देना होता है, ये भी एक फितना है। हक बात को छुपा देना, अपनी मर्ज़ी से बातों को आगे पीछे कर देना। लेकिन हज़रत मूसा इनमें से किसी फितने का शिकार नहीं हुए। और इल्म की सबसे बड़ी आफत क्या होती है कि लोग बड़े शौक़ से इल्म का सफ़र शुरू करते हैं, लेकिन चंद दिन या महीनों के बाद फिर ठंडे होकर बैठ जाते हैं। और इस बूर की तरह जो कच्चा ही झड़ जाता है पहली ही आंधी में, वैसे हो जाते हैं। आखिर में वही फल मीठा होता है जो आखिर तक दरख्त के साथ लगा हो। तो इल्म के सफ़र में भी ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। बोले रब इशराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु। इल्म की महफिल में अपने लिए बेशुमार दुआएं किया करें। जो मौका है उसकी दुआ कर लें, कबूलियत का वक्त होता है। जो लोग ख़ुद घर बैठकर किताबें पढ़ लेते हैं वो ये समझते हैं कि हमने किताबें पढ़कर इल्म हासिल कर लिया। इनकी मिसाल सड़क के किनारे लगे हुए खुद रो पौधे की सी होती है। होते हैं ना जो पौधे खुद से उग चुके होते हैं, झाड़ झंकार, उसी की बात है। जिसके अंदर झाड़ झंकार है, आते जाते हुए लोगों के कपड़े फाड़ रहा है, इसको नहीं पता क्या बात करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है। बस दफ़ा मुख्तलिफ किताबें पढ़ कर खुद ही भटके होते हैं। उस्ताद की शफकत के साथ पढ़ने वाले की मिसाल एक माली की मौजूदगी में खड़े हुए दरख्त की तरह होती है, जो तराशता है, इधर से काटता है, उधर से। अब इसे पानी और खाद की ज़रूरत होती है, तो पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। जो लोग इल्म का सफ़र शुरू करें और फिर आखिरी वक्त तक इस दरख्त के साथ लगे रहें, तो न सिर्फ यह कि खुद मीठे हो जाते हैं, बल्कि आने वाले वक्तों में अपनी मिठास दूसरों को भी देते हैं। अल्लाह करे आपके मेरे साथ ऐसे ही हो। अब ये सारी चीज़ें हज़रत मूसा में देखेंगे। इसमें हज़रत मूसा का जोश व जज्बा भी देखेंगे कि उन्होंने कहा लंबा सफ़र होगा तो भी जाऊंगा। कहा क्या एक दूर एक रास्ते चलते जाएं जहां दो दरिया आपस में मिलेंगे, वहां देखेंगे कि आपके खाने में जो मछली है वो खाने में से निकल कर खुद बहुत गिर जाएगी, तो समझ लें कि वहाँ खिज़र होंगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम इसकी तरफ चल पड़े तो क्या हुआ कि इस रास्ते पर जा रहे थे, साथ अपने शागिर्द को लिया यूश बिन नून को, जो बाद में नबी भी बने। इससे पता चलता है कि जो शागिर्द उस्ताद के साथ रहते हैं, इल्म के साथ हिकमत भी सीखते हैं, और ये शागिर्द हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फिर सदका जारिया बने। आपको शायद पता है कि नहीं, बैतुल मक़दस फिर यूश बिन नून की क़यादत में फ़तह हुआ था। मूसा की ज़िंदगी में बनी इसराइल को वो नहीं मिली थी जगह जो कि वो चाह रहे थे। तो यहाँ ये वाक़या अधूरा है, अगले पारे के साथ चलेगा। लेकिन बात यह है कि हमने ये देख लिया कि हमारे सब के इर्द गिर्द बहुत सारे फितने हैं। इस सूरत में कितने जमा किए हैं? आप में से किसी ने गिने हो तो बताइए। 15 फितने गिने हैं आपने? हाँ, 18 और अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे पूरा सेमिनार हुआ था मेरा अमेरिका या कनाडा ट्रिप में, दौरे हाजिर के फितने और उनका हल। तकरीबन इतने ही फितने थे, लेकिन उसमें डिटेल ज़्यादा थी। तो अगर मौका मिले तो आप कभी उसको भी सीख सकते हैं।